ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
This budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free.
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नए आयकर विधेयक पर अगले मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। देश के लोगों की अपेक्षा और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त विधेयक में कई उपाय किए गए हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अगले 5 वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। लोकसभा में श्री सिंह ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बाद से देश में दूध उत्पादन में 63% की वृद्धि हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अल्पसंख्यकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार 6 अधिसूचित समुदायों के कल्याण के लिए कई व्यक्तिगत योजनाएं चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित इस बजट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उन्नति पर अधिक बल दिया गया है। बजट में 28,000 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान है, जो पिछले बजट से लगभग 2 गुना है। दिल्ली सरकार की अग्रिम योजना महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 100 विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों के शवों के साथ साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत से जुड़े 2 संगठन अलगाववादी गतिविधियां छोड़ चुके हैं। इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए श्री शाह ने सभी समूहों से अलगाववाद को खत्म करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हाल ही में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। श्री कुमार ने सम्मेलन के आयोजन को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, ये सम्मेलन दुनिया भर के रचनाकारों को एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। घरेलू शेयर बाजार आज लगातार 7वें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 78,017 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 10 अंक ऊपर चढ़कर 23,669 पर बंद हुआ। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 6ठे दिन निशानेबाजी में आकाश ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। पावर लिफ्टिंग में एलीट 80 किलो में संदेशा बीजी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कस्तूरी ने एलीट 67 किलो में स्वर्ण पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।